नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, जेनिस ए रिंग की पुस्तक आफ्टर द अफेयर थर्ड एडिशन। बेवफाई के बाद रिश्ते में पैदा हुए गहरे आघात, क्रोध, अपराध बोध और अनिश्चितता को समझने वाली व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है। यह उन दंपतियों के लिए लिखी गई है जिनके संबंध में अफेयर उजागर हो चुका है,
अफेयर समाप्त हो चुका है और कम से कम संबंध को समझने या सुधारने की इच्छा मौजूद है। पुस्तक का उद्देश्य केवल विवाह बचाना नहीं, बल्कि दोनों साथियों को यह तय करने में मदद देना है कि आगे बढ़ना उनके लिए उचित है या नहीं। इस स्प्रिंग घायल साथी के विश्वासघात जनित दर्द को गंभीरता से लेती हैं, साथ ही बेवफा साथी के शर्म, डर और जिम्मेदारी से बचने के व्यवहार को भी जांचती हैं। इसकी केंद्रीय धारणा है कि भरोसा आश्वासनों से नहीं लौटता, उसके लिए ईमानदार स्वीकारोक्ति, पीड़ा को बिना बचाव सुने जाने, पारदर्शिता, संबंध की पुरानी कमियों की जांच और लंबे समय तक भरोसेमंद व्यवहार की जरूरत होती है। पुस्तक क्षमा को बाध्यता नहीं, बल्कि विचारपूर्ण और क्रमिक प्रक्रिया मानती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, घायल साथी के दर्द को मान्यता देना उपचार की पहली शर्त। पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अफेयर को केवल दंपति के बीच का विवाद नहीं मानती। घायल साथी के लिए यह वास्तविकता, सुरक्षा और आत्मसम्मान के टूटने का अनुभव हो सकता है।
इसलिए स्प्रिंग क्रोध, बार बार प्रश्न पूछने की इच्छा, बेचैनी, अपमान और भविष्य के भय को अपरिपक्वता कहकर खारिज नहीं करती। उनका तर्क है कि उपचार तभी शुरू होता है जब बेवफा साथी इस दर्द का साक्षी बने। इसका अर्थ है कि वह साथी रक्षात्मक तर्क, उल्टा दोषारोपण या तुरंत आगे बढ़ने की मांग किए बिना सुने।
अपराध बोध से बचने के लिए कई लोग कहते हैं कि घटना भूल जानी चाहिए, पर ऐसा आग्रह घायल व्यक्ति की भावनाओं को फिर से दबा सकता है।
पुस्तक के अनुसार पीड़ा को जगह देना अफेयर को बार बार दोहराना नहीं है, यह उस अनुभव को भाषा, अर्थ और मान्यता देना है जिसे रहस्य और झूठ ने भ्रमित कर दिया था। जब घायल साथी को लगता है कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है, तब संवाद केवल आरोप और प्रत्यारोप से निकलकर भरोसे की वास्तविक मरम्मत की दिशा में जा सकता है।
दूसरा, अफेयर की जिम्मेदारी और रिश्ते की समस्याओं को अलग रखना। स्प्रिंग एक जरूरी भेद स्पष्ट करती है।
अफेयर करने का निर्णय जिस व्यक्ति ने लिया है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उसी की है। संबंध में दूरी, उपेक्षा, असंतोष या संवाद की कमी रही हो, तब भी वे स्थितियां धोखा देने को उचित नहीं बनाती। यह भेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनर्निर्माण के दौरान बेवफा साथी अपने चुनाव को रिश्ते की कमियों से सही ठहराने लग सकता है, जबकि घायल साथी अपनी हर कमी को अफेयर का कारण मानकर अनावश्यक आत्मदोष में फंस सकता है। पुस्तक दोनों अतियों से बचाती है। एक ओर, बेवफा साथी को बिना शर्त अपने छल, गोपनीयता और हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होती है। दूसरी ओर, यदि दोनों साथ रहना चुनते हैं तो उन्हें उन संबंधगत पैटर्नों को भी देखना होगा जिन्होंने निकटता को कमजोर किया था। यह साझा जांच दोष बांटने के लिए नहीं, भविष्य के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए है। इस ढांचे का व्यावहारिक लाभ यह है कि बातचीत दो अलग प्रश्नों पर केंद्रित रहती है। पहला, धोखे का जवाबदेह कौन है? दूसरा, आगे ऐसा संबंध कैसे बनाया जाए जिसमें भावनात्मक जुड़ाव, सीमाएं और जरूरतों पर ईमानदार संवाद अधिक मजबूत हो।
तीसरा, सस्ती क्षमा से बचना और शोक की प्रक्रिया को पूरा करना। पुस्तक क्षमा को रिश्ते को बचाने के लिए दी जाने वाली तत्काल रियायत नहीं मानती। स्प्रिंग इस जल्दबाजी को सस्ती क्षमा कहती है। इसका आशय उस स्थिति से है जिसमें घायल साथी अकेले पड़ जाने के डर, आर्थिक निर्भरता,
बच्चों की चिंता या संबंध खोने की आशंका से अपने क्रोध और दुख को दबाकर जल्दी माफ कर देता है। बाहर से शांति दिख सकती है, लेकिन भीतर अनकहा आक्रोश, संदेह और अपमान बना रह सकता है। तब भविष्य की छोटी घटनाएं भी पुराने घाव को फिर खोल देती हैं। पुस्तक का तर्क है कि क्षमा का कोई अर्थ तभी है जब व्यक्ति को अपना दर्द महसूस करने, प्रश्न करने, सीमाएं तय करने और यह देखने का अवसर मिला हो कि दूसरा साथी वास्तव में बदल रहा है या नहीं। क्षमा का अर्थ भूलना, अफेयर को सही ठहराना या जवाबदेही समाप्त करना भी नहीं है। यदि क्षमा अंततः चुनी जाए तो वह लंबे समय तक दिखी ईमानदारी और विश्वसनीय व्यवहार के आधार पर अधिक स्थिर हो सकती है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह घायल साथी पर उदार, शांत या तुरंत सामान्य होने का दबाव नहीं डालता। उपचार की गति को दोनों व्यक्तियों की भावनात्मक तैयारी और व्यवहारिक प्रगति के अनुसार चलने देता है।
चौथा, पूर्ण खुलासे और लगातार पारदर्शिता से भरोसे की मरम्मत। अफेयर के बाद भरोसा केवल यह सुन लेने से वापस नहीं आता कि ऐसा फिर नहीं होगा।
इर्प स्प्रिंग की पद्धति में सच बोलना और पर्याप्त खुलासा आधारभूत भूमिका निभाते हैं।
घायल साथी अक्सर केवल शारीरिक या भावनात्मक बेवफाई से नहीं,
बल्कि छिपाव, झूठ और अपनी समझ पर संदेह से भी आहत होता है। इसलिए जानकारी को टुकड़ों में बताना या बाद में नई बातें सामने आना पुनर्निर्माण को लगातार पीछे धकेल सकता है। पारदर्शिता का उद्देश्य दंड देना या साथी की स्थायी निगरानी स्थापित करना नहीं है। इसका उद्देश्य एक ऐसी साझा वास्तविकता बनाना है जिसमें आगे कोई गुप्त क्षेत्र न रहे। बेवफा साथी को अपने व्यवहार के असर की विशिष्ट समझ दिखानी होती है, केवल सामान्य माफी नहीं। लिखित रूप में विस्तृत क्षमायाचना का सुझाव भी इसी कारण उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य करता है कि उसने किस तरह चोट पहुंचाई और उसे बदलने के लिए कौन से कदम उठाएगा। फिर भी पुस्तक का व्यापक संदेश यह है कि खुलासा अपने आप में अंतिम समाधान नहीं। भरोसा तब बनता है जब शब्दों के बाद सीमाओं का सम्मान, संपर्कों में स्पष्टता और समय के साथ एक जैसे विश्वसनीय निर्णय दिखाई दें। अंत में निकटता और यौन संबंध की वापसी को अलग, धीमी प्रक्रिया मानना। अफेयर के बाद भावनात्मक और यौन निकटता का प्रश्न अक्सर सबसे कठिन होता है। पुस्तक इसे केवल दाम्पत्य जीवन को सामान्य करने का मामला नहीं मानती। घायल साथी के लिए शारीरिक निकटता तुलना, घृणा, असुरक्षा या यादों को जगा सकती है। बेवफा साथी के लिए अपराध बोध, अस्वीकृति का भय या जल्दी सामान्य होने की इच्छा मौजूद हो सकती है। इसलिए यौन संबंध को उपचार का प्रमाण मानना या उसे जल्द बहाल करने का दबाव बनाना दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। स्प्रिंग का व्यापक दृष्टिकोण यह है कि निकटता की वापसी पहले भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी है। दोनों को अपनी इच्छाओं, आशंकाओं, सीमाओं और असहज प्रतिक्रियाओं पर सीधे बात करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। इस बातचीत में तुलना, प्रदर्शन या दायित्व के बजाय सहमति और संवेदनशीलता केंद्र में रहती है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि रिश्ता बचाने का अर्थ पुराने संबंध की हूबहू वापसी नहीं है। यदि दंपति पुनर्निर्माण में सफल होता है तो उसे अधिक स्पष्ट सीमाओं, बेहतर संवाद और सचेत भावनात्मक उपस्थिति वाला नया संबंध बनाना पड़ता है। इसीलिए समय की कोई एक निश्चित सीमा नहीं है। कुछ दंपतियों को पेशेवर चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता भी हो सकती है। निष्कर्ष में आफ्टर द अफेयर उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बेवफाई के बाद केवल सांत्वना नहीं बल्कि कठिन प्रश्नों का गंभीर ढांचा चाहते हैं। घायल साथी को इसमें अपने तीव्र भावों की मान्यता और जल्द माफ करने के दबाव से राहत मिलती है। बेवफा साथी को यह समझने में मदद मिलती है कि पछतावा पर्याप्त क्यों नहीं है, और सुनना, इत स्पष्ट जिम्मेदारी लेना तथा लंबे समय तक पारदर्शी व्यवहार दिखाना क्यों जरूरी है। दंपति इसे बातचीत की दिशा तय करने, सीमाएं स्पष्ट करने और यह परखने के लिए पढ़ सकते हैं कि उनका संबंध सचमुच मरम्मत योग्य है या नहीं। चिकित्सक और परामर्शदाता भी इसकी संतुलित भाषा से लाभ ले सकते हैं। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो बेवफाई करने वाले व्यक्ति को राक्षसी बना देती हैं या रिश्ते की समस्याओं के नाम पर उसके निर्णय की जिम्मेदारी धुंधली कर देती हैं। स्प्रिंग की पुस्तक इस द्वंद से बचती है। वह अफेयर के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी बेवफा साथी पर रखती है, लेकिन भविष्य का रिश्ता बनाने के लिए दोनों के संबंधगत पैटर्न की जांच भी आवश्यक बताती है। इसकी दूसरी विशिष्टता क्षमा पर इसका संयमित दृष्टिकोण है। पुस्तक क्षमा को नैतिक आदेश, भूलने की शर्त या संबंध बचाने का शॉर्टकट नहीं बनाती। इसके बजाय यह शोक, जवाबदेही, खुलासे, पारदर्शिता और निकटता की धीमी बहाली को जोड़ती है। यही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन इसे अफेयर रिकवरी की चर्चित मार्गदर्शिकाओं में अलग स्थान देता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जानिस ए स्प्रिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।